जब इतने दिनों में आपको एक बार मेरी याद नहीं आई, आपने एक बार भी फोन करके मेरा हालचाल पूछने की जरूरत महसूस नहीं की, जब मेरी गैर मौजूदगी से आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो आप क्यों आए हैं मुझे लेने? जब इतने दिनों आपको याद नहीं आई कि आपकी पत्नी यहाँ पड़ी है, तो अब ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी कि मुझे लेने चले आए? कशिश ने पत्नी शब्द पर खासा जोर दिया था और कई सवाल ईशान से किए थे, लेकिन जवाब भी खुद ही दे दिया। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई, आपने ही तो बताया था कि दीदी ने कहा मुझे वापस लाने, इसीलिए आए हैं आप मुझे लेने, वरना खुद से चलकर इस मुसीबत को फिर से अपने सर पर क्यों सवार करेंगे? तो जब आप मुझे वापस ले जाना चाहते ही नहीं, तो किसी मजबूरी में आकर आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत भी नहीं जो आपका दिल नहीं चाहता। जाइए वापस और अपनी आज़ादी का जश्न मनाइए। दीदी से मैं बात कर लूँगी कि अभी मैं वापस नहीं आना चाहती, और आप अब उस दिन मुझे वापस लेने आइएगा जिस दिन आपको मेरी कमी खले, और किसी के कहने पर नहीं, अपनी मर्जी से मुझे वापस अपने घर और अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहें। कशिश बेहद संजीदा थी, ईशाई एकटक उसे देख रहा था, और कानों में रजनी के कहे शब्द गूंज रहे थे कि कशिश मोहब्बत करती है उससे। शायद ये उस मोहब्बत का ही असर था कि ईशान की ज़िंदगी में अपनी अहमियत ना पाकर इतने दर्द में थी वो। उसका ये रिएक्शन बहुत कुछ बयां कर रहा था। ईशान कुछ पल खामोशी से और बड़े ही ध्यान से कशिश को देखते हुए उसकी कही बातों के बारे में सोचता रहा। फिर उसने ठंडी आह भरी और होंठ टेढ़े करते हुए बोला, अजीब हो तुम भी, सवाल भी खुद पूछती हो और जवाब भी खुद ही देती हो। जब सामने वाले को कुछ बोलने का मौका ही नहीं देना, तो मंतरयामी बनकर पहले से सब जानती हो तो सवाल पूछती ही क्यों हो? क्या मतलब? कशिश आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगी। ईशान ने उसकी बड़ी बड़ी आंखों में झांकते हुए बेहद गंभीर स्वर में आगे कहा, जो मैं ना करना चाहूं, दुनिया की कोई ताकत मुझे वो करने पर मजबूर नहीं कर सकती। ईशान की बात पर कशिश ने तुरंत ही कटाक्ष किया, झूठ, करना तो आप शादी भी नहीं चाहते थे, पर दीदी के कारण मजबूरी में करनी पड़ी। बिल्कुल नहीं, दीदी तो बहुत वक्त से शादी के लिए दबाव डाल रही थी, पर मुझे मजबूर नहीं कर सकी। मैंने शादी की क्योंकि मैं चाहता था। हाँ, उसके पीछे वजह दीदी की जिद ही थी, पर मैंने चाहा, इसीलिए आज तो मेरी पत्नी बनकर मेरे सामने खड़ी हो। आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ कहिए। कशिश ने उसकी बातों में उलझते हुए चिढ़ते हुए सवाल किया। बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर मैं नहीं चाहता, तो दीदी के एक क्या लाख बार कहने पर भी यहाँ तुम्हें लेने नहीं आता। अगर तुम्हारी कमी का एहसास ना होता, तो इस वक्त तुम्हारे सामने ना खड़ा होता। इसके आगे तुम्हें जो सोचना है, जो समझना है, समझो। मैं बस इतना कहूंगा कि हमारा कमरा तुम्हारी वापसी की राह देख रहा है, और मैं बाहर इंतजार करूंगा तुम्हारा। अगर आज नहीं गई मेरे साथ, तो अगली बार खुद से आना, क्योंकि मैं एक बार खाली हाथ जाने के बाद दोबारा नहीं आऊंगा तुम्हें लेने। ईशान ने बेहद गंभीरता से अपनी बात कही, दृढ़ता से अपना फैसला सुनाया और कमरे से बाहर चला गया। कशिश आंखों की पुतलियां फैलाए अचंभित से उसे देखती ही रह गई। कुछ वक्त गुजरा, अभिषेक और अरविंद जी दोनों आ गए थे, और आंगन से सबकी आवाजें आ ही थीं। ईशान भी वहीं सबके साथ बैठा था, पर ध्यान उसका कशिश में अटका था। कह तो आया था, पर कशिश के दिमाग का कोई भरोसा नहीं था। अगर नहीं आएगी तो खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा, यही बात उसकी परेशानी की वजह थी। वहां बैठे सब आपस में बातें कर रहे थे, तभी पायलों की झनकार हवाओं में गूंज उठी और चूड़ियों की खनखनाहट ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। सबके साथ साथ ईशान की निगाहें भी आवाज की दिशा में घूम गई, और जैसे ही नजर सामने से चली आ रही कशिश पर पड़ी, निगाहों ने उस पर से हटने से इनकार कर दिया। गहरे नीले रंग की साड़ी में लिपटा उसका गोरा बदन निखर गया था, बालों को संवारकर जुड़े में बांधा हुआ था, मांग में भरा सिंदूर दूर से ही अपनी उपस्थिति जाहिर कर रहा था। दोनों भौहों के बीच सजी बिंदी सितारों से चमक रही थी। हल्के गुलाबी रंग में रंगे लब मन मन मुस्कुराते हुए बड़े प्यारे लग रहे थे। काजल से सनी सुरमई कत्थई आंखों पर पलकों का पहरा लगा था। कानों में इयररिंग्स खुशी से झूम रहे थे, मानो घर लौटने की उत्सुकता जाहिर कर रहे हों। चूड़ियों से भरी कलाइयां और पैरों में पड़ी पाजेब ईशान की धड़कनों को बढ़ा रही थी। कुछ देर पहले उसका जो रूप देखकर आया था, उससे बिल्कुल जुदा लग रही थी वो, और बेहद हसीन। ईशान एकटक उसे निहारने लगा और गौर किया कि उसके सीने में मौजूद दिल जोरों से धड़क रहा था। हर बार कशिश पर से नजरें फेरने वाला ईशान आज पूरे अधिकार से निहार रहा था उसे। माधुरी जी ने कशिश को देखा तो मुस्कुराकर उसके पास चली आईं, उसकी नज़र उतारते हुए प्यार से उसके माथे को चूम लिया। बहुत प्यारी लग रही है आप, महादेव आपको बुरी नज़र से बचाए। कशिश की मुस्कान गहरी हो गई, माधुरी जी चुप हुई। इतने में शिखा कशिश के पास चली आई और मुंह फुलाते हुए नाराजगी से बोली, भाभी ये गलत बात है, आप तो इतनी जल्दी जा रही हैं, अभी तो मुझे और ढेर सारी बातें करनी थी आपसे। कितना मजा आता था आपके साथ, अब मैं फिर से बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। मैं आऊंगी ना दोबारा, फिर कुछ वक्त बाद तो दीदी हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाएंगे और हम फोन पर बात भी करेंगे, मन करे तो मिलने चली आना मुझसे। कशिश ने स्नेह से उसके गाल को सहलाते हुए उसे समझाया, पर शिखा ने मुंह बिचका लिया। कशिश को माधुरी जी ने ईशान के पास बिठा दिया। कुछ देर बातों के बाद दोनों का डिनर यहीं हुआ। फिर दोनों सबसे विदा लेकर मिश्रा निवास जाने को निकल गए।